हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मॉम आती हूँ मैं। पिछले अध्याय में आपने देखा कि मैंडी अपनी मॉम को वंश के बारे में बताने लगी, और तभी गीत ने वंश को लड़कियों से घिरा हुआ देखा, जिससे उसे गुस्सा आया। मैंडी और वंश की बातें जारी रहीं। फिर रवनीत ने गीत के गुस्से को भांपा। मैंडी ने वंश और रवनीत की दोस्ती के बारे में पूछा। वंश ने बताया कि उसे गांव पसंद है और वो गीत को जानता है। मैंडी की बातों पर रवनीत ने अजीब प्रतिक्रिया दी। वंश ने बताया कि वो और गीत शिमला जा रहे हैं। गीत ने वंश को उसके पता का फोन आने की बात बताई, जिसमें वंश की मॉम के बीमार होने की खबर थी। गीत ने वंश को बताया कि उन्हें वापस जाना होगा। आपके साथ ही जाऊंगी। वो दोनों वहां से उठ खड़े हुए थे। यही तो टाइम है मॉम का दिल जीतने का। अगर वो बीमार हैं तो मुझे उनके पास होना चाहिए। और दिल जीतकर क्या करोगी? वंश ने कहा। उनके बेटे के दिल पर परमानेंट कब्जा करना है। वंश को इस बात का आइडिया नहीं था कि उनकी मॉम कितनी सीरियस हैं। वो रात को काफी लेट मुंबई पहुंचे। वंश की गाड़ी पहले ही उन्हें लेने पहुंच चुकी थी। वो दोनों वहां से सीधा हॉस्पिटल गए। रात को उस वक्त नीता के पास कोई भी नहीं था। उसका ऑपरेशन हो चुका था, मगर हालात अभी भी सीरियस बनी हुई थीं। रात को वो दोनों नीता के रूम में पहुंचे। वहां पर रात को नर्स थी। उसके पास राजवीर, जिसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, वो घर चला गया था। सोना इस हालत में नहीं थी कि रात को नीता के पास रुक सके। सिया वहां पर आई तो जरूर थी, मगर वो इन दो दिनों में 10 मिनट से ज्यादा वहां नहीं रही थी। उसे वो कहती थी कि उसे अस्पताल से नफरत है। मॉम तो सो रही है, वंश ने धीरे से कहा। नर्स जो वहां पर थी वो अपनी चेयर पर सो रही थी। उसकी आंख खुल गई। मॉम कैसी है? वंश ने उससे पूछा। अब मैडम ठीक है, मगर खतरे से बाहर नहीं है, नर्स ने कहा। इस टाइम दवाइयों का नशा होगा। मॉम को सोने देते हैं। वंश, आप घर चले जाओ। मैं हूँ मॉम, घर भी देखना जरूरी है। सोना की हालत आपको पता है, आपको उसे भी देखना है, फिर डैड को भी आपकी जरूरत है। सुबह आ जाए, मैं यहीं पर हूँ। गीत ने वंश को घर भेज दिया था और वो खुद वहीं हॉस्पिटल में रुक गई थी। आधी रात के बाद दवाइयाँ का नशा कम हुआ और नीता की आंख खुली। उसने देखा वहाँ पर नर्स नहीं, गीत थी। गीत वहाँ चेयर पर बैठे बैठे सो रही थी। उसे अच्छा लगा था कि कोई उसके पास था। उसे देखने के बाद वो दोबारा सो गई थी। जैसे ही सुबह नीता की आंख खुली, गीत उठ चुकी थी। गीत को अभी भी डर था कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। गीत ने धीरे से नीता के हाथ पर हाथ रखा। मामा, आप ठीक हैं? नीता को काफी हैरानी हुई थी, क्योंकि वो उसे आंटी कहती थी। नीता ने पलके झपकाकर जवाब दिया। कोई इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, जब वो बीमार होता है तो उसे अपनों की जरूरत महसूस होती है। गीत भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। नीता आंखें बंद करके फिर रेस्ट करने लगी थी। तब तक वंश भी आ गया। वो गीत के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था और सोना भी उसके साथ थी। वो तीनों काफी देर वहां बैठे रहे। सोना थोड़ी परेशान थी। तुम क्यों परेशान होती हो सोना? मॉम ठीक है, गीतों ने सोना से कहा। देख लेना, बहुत जल्दी हम लोग घर आ जाएंगे। वंश, आप थोड़ी देर के लिए जहाँ रुको, मैं सोना के साथ एक बार घर जाती हूँ। घर पर देखने के बाद मैं आऊँगी, फिर आप ऑफिस चले जाएं। गीत वंश को वहाँ छोड़ती हुई सोना के साथ घर आ गई थी। उसने सोना को बहुत अच्छे से संभाला। सोने के साथ उसकी शुरू से ही अच्छी दोस्ती थी। 2 घंटे के बाद वो वापस आ गई थी और उसने वंश को वहां से जाने के लिए कह दिया था। साथ ही कहा था कि शाम को आते हुए सोना को साथ ले आएं। पूरा एक हफ्ता नीता की हालत ज्यादा सीरियस थी। गीत का एक पैर घर था तो दूसरा हॉस्पिटल। उसने घर, हॉस्पिटल में नीता, सोना, राजवीर और वंश सभी को अच्छे से संभाल लिया था। एक भी मिनट ऐसा नहीं हुआ था जब नीता को अकेला छोड़ा हो। रात को हमेशा उसके पास गीत रही, दिन को शाम को वंश वहां रुकता। दोपहर को राजवीर और सोना वहां आ जाते, उस वक्त गीत घर चली जाती। सिया आई तो जरूर थी, जब वंश और गीत दोनों का करीब होना उसकी समझ में आने लगा था। वो सब कुछ छोड़कर विदेश चली गई। 15 दिन के बाद नीता घर आ गई। उसके बाद नीता को बेहद देखभाल की जरूरत थी। उसके लिए चाहे नर्स रखी गई थी, मगर गीत ने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी इस जिम्मेदारी को देखकर वंश और राजवीर दोनों ही निश्चिंत थे। नीता की बीमारी की बात सुनकर गीत के दादाजी और उसके बड़े दादाजी की फैमिली सभी आए थे। रवनीत ने तो एक दो दिन रुका भी था। उन सब के आने से नीता को गीत की बैकग्राउंड के बारे में भी पता चल गया था। सिया भी वही सब देखने के बाद वहां से विदेश गई थी। साथ में ही नीता को पता चल गया था कि गीत ने कितनी बड़ी प्रॉपर्टी खुद ठुकराई थी। उसे रुपए पैसे का कोई लालच नहीं था। संडे का दिन था। वंश और राजवीर दोनों ही घर थे। सभी लॉन में बैठकर शाम की चाय पी रहे थे। अब नीता भी थोड़ा थोड़ा बाहर बैठने लगी थी। गीत लक्ष्मी के साथ चाय लेकर बाहर आती है। अब बताओ नीता, मेरा फैसला कितना गलत था और कितना सही? राजवीर ने नीता की तरफ देखा और साथ ही वंश की तरफ। उस टाइम तुम दोनों माँ बेटा मेरे कितने खिलाफ थे? क्या सचमुच इस घर को और इस घर के लोगों को गीत की जरूरत नहीं थी? पिछले दिनों में अगर गीत नहीं होती तो हम लोगों के लिए कितना मुश्किल होता? गीत ने कैसे सब कुछ संभाला है? इसकी वजह से तुम्हारा नालायक बेटा भी पूरा बिजनेस संभालने लगा है। इन पिछले दिनों में वंश ने मेरा बहुत ध्यान रखा है। गीत को राजवीर का इस तरह कहना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी लाइफ पटरी पर आने लगी थी। उसे लगा इस बात से नीका और वंश किसी को बुरा ना लगे। मैं बहुत बड़ा उल्लू का पट्ठा हूँ, मुझे समझना चाहिए था। मेरे डैड मुझे कितना प्यार करते हैं, तो मुझे उनकी बात चुपचाप मान लेनी चाहिए थी। वंश ने आराम से चाय का कप उठाते हुए गीत की तरफ देखा। वंश की आंखों में जीत के लिए प्यार ही प्यार था। तुम उल्लू के पट्ठे नहीं, उल्लू हो, क्योंकि ऐसे तो अगर तुम उल्लू हो नहीं तो मैं उल्लू हो जाऊंगा, राजवीर ने मुस्कुरा कर कहा। नीता की आंख से पानी आ गया। गीत को घबराहट हुई। उसे डर था कि मॉम को कहीं इस बात से बुरा ना लगे। मेरी ही गलती थी राजवीर, पता नहीं मैं ऐसा क्यों सोचती थी। सच में गीत के होते मुझे वंश न आपकी किसी की फिक्र नहीं। इसने तो सोने को भी बहुत अच्छे से संभाला है। मैंने भी सोने की कभी परवाह नहीं की थी। अब छोड़िए इन बातों को, क्या बातें लेकर बैठ गए। मुझे भी तो फैमिली मिली है, मुझे भी तो जरूरत थी, गीत ने कहा। और हाँ, मेरी सोना के लिए भी बात हो चुकी है। 15 दिन बाद की अपॉइंटमेंट है। मैंने डॉक्टर सोना की रिपोर्ट्स भेजी थी। उस डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे कई ऑपरेशन किए हैं, जो लोग व्हीलचेयर पर थे वो चलने फिरने के काबिल हो गए। 15 दिनों के बाद मैं और गीत सोना को लेकर विदेश जा रहे हैं। उन दिनों में आपको पूरा बिजनेस देखना पड़ेगा, वंश ने मुस्कुरा कर कहा। सिर्फ थोड़े दिनों के लिए, जब तुम दोनों सोना को लेकर वापस आ जाओगे, मैं और नीता फिर एक लंबी छुट्टियों पर जाएंगे। हमें भी तो रेस्ट की जरूरत है, राजवीर ने कहा। सही बात है राजवीर, हम दोनों चलेंगे, नीता कहने लगी। वंश ने मुस्कुराकर गीत की तरफ देखा। मैं भी बहुत खुश हूँ कि गीत मेरी भाभी है, सोना भी कहने लगी। अब सिर्फ मेरी 2 इच्छाएं बाकी हैं, राजवीर कहने लगा। बताइए डैड, क्या इच्छा है डैड? आपकी हर इच्छा अभी पूरी कर देते हैं, वंश ने कहा। एक तो सोना के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, और दूसरा हमें अब दादा दादी भी बना दो। अब तुम दोनों के बच्चों के साथ खेलना है, राजवीर ने हंसकर कहा। अपने डैड की बात पर वंश ने गीत की तरफ शरारत से देखा।
ये दोनों इच्छाएं तो बहुत छोटी हैं डैड। सोना का ऑपरेशन हो जाए, फिर इसके बाद इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं। और रही बात आपके दादा बनने की, तो बहुत जल्दी आपकी ये इच्छा पूरी कर देंगे। वंश की बात पर गीत ने एकदम से उसकी तरफ देखा। वो भी उसकी तरफ देख रहा था। गीत ने शर्मा कर दूसरी साइड चेहरा कर लिया। इसी समय राजवीर के फोन पर वर्षा का कॉल आता है। भाई साहब मुबारक हो, अंबर ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, वर्षा ने खुश होकर कहा। ये सुनकर राजवीर के चेहरे पर खुशी छा गई। ठीक है, हम लोग आज शाम को उसे देखने के लिए आ रहे हैं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फोन काटने से पहले वर्षा ने नीता भाभी की तबीयत पूछी और कहा, भाभी अब आप कैसी हैं? नीति ने तुरंत कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ, मेरी बहू ने मेरी बहुत सेवा की है। तब वर्षा ने अनीता को खबर दी, अंबर को प्यारी सी बेटी हुई है। इस पर नीति ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तो कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि मैं आ सकूं, मगर बाकी फैमिली जरूर हॉस्पिटल आएगी। शाम को सनीता को घर पर छोड़कर वर्षा, राजवीर, वंश और गीत अंबर और उसकी बच्ची को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। जैसे ही वे कमरे में गए, उन्होंने देखा कि वेदांत गोद में प्यारी सी बच्ची को लिए बैठा है और अंबर बेड पर लेटी हुई है। वर्षा, ब्रिजेश, बीनू और अंबर के मम्मी पापा सब वहीं मौजूद थे। नन्ही सी बच्ची को देखकर सबके चेहरे पर खुशी खेल उठी। उसे देखकर गीत ने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। तभी वंश ने शरारत से कहा, मुझे दो, मुझे भी गोद में लेना है। जितने ने हंसते हुए बच्ची को वंश की गोद में दे दिया। तभी वेदांत ने नाराजगी सी जताई, अगर खेलना है तो अपने बच्चे पैदा करो, मुझे मेरी बेटी वापस दो, मुझे अपनी बेटी से खेलना है। वंश ने मुस्कुराते हुए बच्ची को सीने से लगाया और कहा, कोई बात नहीं भाई, हम अपने बच्चे भी पैदा कर लेंगे, लेकिन देखो मैं तुम्हारी बेटी को साथ थोड़ी ले जा रहा हूँ। ये सुनकर सब हंस पड़े। वेदांत ने छेड़ते हुए कहा, वैसे भाई मैं देख रहा हूँ अब ये वंश तो पहले वाला वंश नहीं रहा। शादी वाले दिन जो चेहरा था वैसा तो अब बिल्कुल नहीं है। राजवीर हंसते हुए बोला, सही कहा, अब मैंने भी लड़की ऐसी चुनी है जो सबके दिलों पर राज कर रही है। हाँ बिल्कुल, हमारी बहू बहुत अच्छी है, बृजेश ने अंबर और गीत की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, आखिरकार पूरा परिवार इसी पर निर्भर करता है कि हमारे घर में आने वाली बहू कैसी है, और हम सच में खुशनसीब हैं कि आज पूरा परिवार हमारे साथ है। कमरा खुशियों और हंसी से गूंज उठा। समाप्त।